हरि ओम हरि ओम हरि ओम शिव 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 शिव। भगवान की विभूति सर्वतीर्थ स्वरूप पवित्र सागर के तट पर देवाधिदेव महादेव भगवान श्री बाबुलनाथ जी के पावन सानिध्य में अनेकानेक ऋषियों की महामनीषियों की तपस्थली स्वरूप श्री प्रेमपुरी अध्यात्म विद्या भवन के सत्संग प्रांगण में हम सब साधक वृंद अपने जीवन को कैसे धन्य करें, अपने जीवन को कैसे कृतकृत्य करें, इस बिंदु के ऊपर आचार्य शंकर का सहारा लेकर के भगवान शंकराचार्य जी के द्वारा विरचित धन्याष्टकम का चिंतन हम लोग कर रहे हैं। प्रथम श्लोक का मनन हम लोग कर रहे हैं। धन्यता को समझने की कोशिश हम लोगों ने कल की थी। और उसको प्राप्त करने के साधना क्या है इसको तो आचार्य शंकर स्वयं ही बता ही रहे हैं। जब हम जीवन को संपूर्णता की दृष्टि से देखते हैं और कब और कैसे व्यक्ति अपने आप को धन्य महसूस करता है इसका जब अवलोकन करते हैं तो तीन स्तर की धन्यता आपको स्पष्ट दिखाई पड़ेगी, जिसके लिए आप तीन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, श्रेष्ठ धन्यता, श्रेष्ठतर धन्यता और श्रेष्ठतम धन्यता। आइए इसके स्वरूप का थोड़ा विश्लेषण कर दें तो हमें भी पता चले कि हमें कहां तक जाना है और हम कहां खड़े हैं। श्रेष्ठ धन्यता से यहां पर अभिप्राय ये है, हम जिस संसार में जी रहे हैं जिस इंद्रिय ग्राह्य संसार को हमने आश्रय बना करके रखा है, सामान्य स्तर में हमारा जीवन यहीं से प्रारंभ होता है, संसार ही हमें अपना सहारा मालूम पड़ता है, संसार ही हमें रमणीय प्रापणीय मालूम पड़ता है, तब व्यक्ति की मनोदृष्टि कैसी होती है, वो व्यक्ति क्या चाहता है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति यही सहेगा स्वस्थ शरीर हो। उपनिषद की भाषा में यदि बोलना है तो ये चीज थोड़ी आगे चली जाएगी, युवा हूं मैं, सम्राट हूं और संपूर्ण वित्त से परिपूर्ण ये पृथ्वी मेरे अधीन हो, और युवा शिक्षित हूं मैं, सुसंस्कारित हूं मैं, इस प्रकार की जो मानवीय गुणावली है और जो मानवीय पदार्थ हैं, जो मानव जगत में उपलब्ध हैं, शास्त्र सम्मत विधि से निरंकुश रूप से यदि मुझे प्राप्त हो तो संसार की दृष्टि में और संसारिक दृष्टि में मैं धन्य हूं। ये भी श्रेष्ठ धन्यता है, क्योंकि इसमें पाप का संपुट नहीं है। व्यक्ति धर्म सम्मत मार्ग पर स्थित रह करके अपने पुण्यों के प्रभाव से जब इतने सारे पदार्थों को यदि उपलब्ध करता है तो मानना पड़ेगा कि वो व्यक्ति धन्य है, दूसरों से श्रेष्ठ है। क्योंकि ये जो आनंद की प्राप्ति है, आनंद की उपलब्धि है, सुख की उपलब्धि है, इसका मूल है पुण्य। और ये जो दरिद्रता है इसका मूल है पाप। एक बार सब ऋषियों ने मिलकर के एक बड़ा सम्मेलन किया और इसका कारण खोजने की कोशिश की कि मनुष्य तो सब भगवान की ही संतान है, फिर भी कुछ मनुष्य अत्यंत दुखी है, कुछ मनुष्य अत्यंत आनंद से जीवन जी रहे, इसके पीछे कारण क्या है, दरिद्रता का मूल उत्स क्या है, व्यक्ति दरिद्र क्यों होता है। तो ऋषियों ने जो निर्णय निकाला उसको एक श्लोक बद्ध किया, अदत्त दानाच भवेत दरिद्रो, दरिद्र भावाच करोति पापम, पाप प्रभावात नरके प्रयाति, पुनरेव दरिद्र पुनरेव पापी, पुनरेव दरिद्र पुनरेव पापी। क्यों आदमी दरिद्र होता है, माने हमारे दुख का मूल क्या है। अदत्त दानाच भवेत दरिद्र, धर्म सम्मत, विधि सम्मत, शास्त्र सम्मत जो द्रव्य का विनियोग करके जीवन यापन करना चाहिए था, सबके साथ शेयर करके खाना चाहिए था, सामर्थ्य होते हुए भी व्यक्ति जब ऐसा नहीं करता है, दूसरों का शोषण करके धन संग्रह करता है, दूसरों का शोषण करके जब अपना जीवन संचालित करता है, तो ये जन्म तो हो सकता है व्यक्ति के पीछे के पुण्य के प्रभाव से जैसे तैसे चल जाएगा, परंतु आगामी जन्म में वो दरिद्र होगा, ऐसा ऋषियों का निर्णय है। अदत्त दानाच भवेत दरिद्रो, और दरिद्र होगा तो क्या करेगा, बुभुक्षित किम न करोति पापम, पेट में यदि आग लगी है, भूख से तड़प रहा है, तो वो आपके धर्मा धर्म शास्त्र शास्त्र का विचार नहीं करेगा, जो पड़ेगा सामने उसी की हत्या करके अपना जीवन निर्वाह के लिए प्रयत्नशील हो जाएगा। आपने देखा होगा अनेक प्राणी जब मां बनते हैं तो भूख से बहुत पीड़ित होने के कारण मां अपने बच्चे को ही खा जाती है। मां जैसा हृदय जो संतान के लिए अपनी जीवन हथेली पे रख देती है, एक गाय शेर से भिड़ जाती है, वो जानती है कि मेरा सामर्थ्य नहीं है शेर के सामने कुछ भी, परंतु जब तक वो जिंदी है अपनी संतान पर आंस नहीं आने देगी, और वही मां भूख से पीड़ित होकर के अपनी संतान को खा जाती है। बुभुक्षित किम न करोति पापम, दरिद्रता पाप का मूल है, और पाप प्रभावात नरके प्रयाति, और पाप जब करेगा तो भैया नरक में ही जाएगा, और नरक से यदि आएगा तो पुनरेव दरिद्र पुनरेव पापी। तो मैं कहना ये चाह रहा था कि हमारे दुखों के मूल में कहीं ना कहीं पाप बैठा हुआ है, और जीवन यदि आनंद से परिपूर्ण है, आप बड़े संतोष से और आनंद से, यदि सांसारिक जीवन की बात कर रहा हूं मैं, सांसारिक जीवन का यदि आनंद ले रहे हैं, संतुष्ट हैं, तो मानना पड़ेगा कि आपके पुण्यों का प्रभाव है, आपके सत्कर्मों का प्रभाव है, ये श्रेष्ठ जीवन है। इस जीवन के मूल में क्या है, इस श्रेष्ठता का मूल बिंदु क्या है, वस्तुओं की उपलब्धि। आप अपने को श्रेष्ठ क्यों मान रहे हैं, सुखी क्यों मान रहे हैं, क्योंकि आपको जितना खाने के लिए चाहिए, जीवन में आनंद करने के लिए जितने संसाधन चाहिए, जीवन को प्रेम से जीने के लिए जितनी सामग्री चाहिए, जितना धन चाहिए, जितने जन चाहिए, जितना सहयोग चाहिए, सब आपको उपलब्ध है। इसलिए हम अपने को श्रेष्ठ महसूस करते हैं, धन्य महसूस करते हैं, कृतकृत्य महसूस करते हैं। ये प्रथम स्तर है धन्यता का, सांसारिक स्तर आप इसको बोल सकते हैं। इससे हायर एक स्तर और है, इसको यदि आप श्रेष्ठ धन्यता नाम दोगे तो उसको श्रेष्ठ तर धन्यता मान सकते हैं। ये धन्यता है, ये धन्यता कब आती है, ये आती है भगवत शरणागति से। जब व्यक्ति अपने जीवन को संपूर्णतया परमात्मा की चरणों में अर्पित कर देता है, उस समय उसे कोई परवाह नहीं होती है, यदि उसका सब कुछ लूट जाए तो भी वो अपने आप को दीनहीन करुण और अधन्य महसूस नहीं करेगा। हमारा दिल तो कांपने लग जाता कि हमारा सब कुछ लूट जाए, और फिर भी हमारे दिल में थैंक्स हो भगवान के प्रति बहुत कठिन काम है। परंतु इतिहास जब पलट करके देखते हैं, भक्तों का जीवन जब पलट करके देखते हैं, भक्तों के चरित्र में जब झांकते हैं, तो ऐसे ऐसे अद्भुत दृष्टांत आपको मिलते हैं। बलि का ही दृष्टांत ले लीजिए, भगवान आए, कहा कि हमको तीन पैर भूमि चाहिए, तीन पैर भूमि दे दीजिए। महादानी था, प्रभु प्रेमी था, संत सेवी था, कहा कि महाराज आप तीन पैर केवल भूमि मांग रहे हो, वो भी कुटिया बनाने के लिए, कैसे तो आप अपनी कुटिया बनाओगे, कहां आप अपनी यज्ञशाला बनाओगे, कहां आप अपने शिष्यों को पढ़ाओगे, थोड़ी ज्यादा मांग लो। कहा कि ना, पर्याप्त है, तीन पैर दे दो। और वामन बन करके आए और तीन पैर भी कह रहा है मेरे अपने पैर से दे दो, बलि ने कहा कि महाराज क्यों धोखा खा रहे हैं, असुरों की सेना है, बड़े बड़े असुर हैं, एक ही पैर में 2-3 किलोमीटर माप देते हैं, उनसे यदि 3 किलोमीटर दे देते हैं तो 8-10 किलोमीटर हो जाएगी, बढ़िया आश्रम बन जाएगा। कहा ना, हमारे अपने ही पैर से माप करके लेंगे। मापा, एक पैर में तो पूरा पृथ्वी लोक माप दिया, दूसरे पैर में पूरा स्वर्ग लोक माप दिया, तीसरा पैर रखे कहां। कहा बाली को बांध लो, ये दुष्ट है, इसने वादा किया था 3 पैर देगा और 3 पैर नहीं दे रहा है। बांध दिया। नर्मदा की तपती हुई बालू में बंधा हुआ सम्राट पड़ा हुआ है। सब लोग विद्रोही हो गए, हाय हाय करने लगे। शुक्राचार्य जी ने पहले भी कहा था तुम्हारे साथ धोखा हो रहा है। जब शुक्राचार्य जी ने बाली के कान में जाकर के बोला, अब कैसा लग रहा है, बाली ने कहा, मैं धन्य हो गया। धन्योहम धन्योहम धन्योहम। ये कैसी धन्यता है भैया, सब कुछ लूट गया परंतु व्यक्ति कह रहा है धन्य हूं। दूसरा उदाहरण ले लीजिए विभीषण का। लंका में आनंद से जी रहा है, साधनों से संसाधनों से परिपूर्ण जीवन है, जिस लंका में सर्वश्रेष्ठ भोग उपलब्ध है उस लंकेश का अनुज है, सब छोड़ करके जब भगवान के पाले में आ गया युद्ध करने के लिए, और जब विकट परिस्थितियों में कुंभकर्ण के सामने युद्ध करने के लिए गया, तो कुंभकर्ण ने क्या कहा था उसको पहली बार देख करके, धन्य धन्य तुम धन्य विभीषण, 3 बार धन्य बोला विभीषण को, धन्य धन्य तुम धन्य विभीषण, तुम धन्य हो विभीषण, तुमने केवल अपना ही जीवन पावन नहीं किया है, पूरे असुर कुल को पवित्र कर दिया तुमने। ये कैसी धन्यता है, ये प्राप्ति की धन्यता नहीं है, ये शरणागति की धन्यता है। ये धन्यता पहली वाली धन्यता से थोड़ी ज्यादा अच्छी है, थोड़ी हायर है, थोड़ी डिवाइन है, थोड़ी पवित्र है। परंतु मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा, ये श्रेष्ठतर तो है परंतु श्रेष्ठतम क्यों भैया, फिर क्या बाकी रहा, व्यक्ति ने सब कुछ लूटा दिया, अब क्या उसके प्राण ही ले लोगे क्या धन्य बनाने के लिए, और क्या बाकी रहा। शरणागति की जो धन्यता है वो श्रेष्ठतर धन्यता है, एक धन्यता का इससे और हायर स्टेज है, वो स्टेज है अपने आप को ब्रह्म के साथ अभेद अनुभव करना, अपने आप को ब्रह्म स्वरूप अभेद ब्रह्म स्वरूप अनुभव करना। जब वो अपने आप को ब्रह्म रूप अनुभव करेगा, शरणागति में भी भेद है, द्वेत है, अपने इष्ट से एक दूरी है, अपने आराध्य के और अपने बीच में एक गैप है, इसलिए श्रेष्ठतर हो सकती है परंतु ये धन्यता श्रेष्ठतम नहीं है। श्रेष्ठतम धन्यता है जब आप ब्रह्म रूप हो गए, जब आप आत्म रूप हो गए, आपने ये आविष्कार कर दिया कि मैं अजर अमर अविनाशी हूं, मारो सत चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। ये धन्यता किसी किसी को मिलती है। मेरा सत चित आनंद रूप, इस आविष्कार को करना ये धन्यता का चरम है, ये धन्यता का हाईएस्ट स्टेज है और ये हमारे जीवन का टारगेट होना चाहिए। हमारे मन में एक संकल्प होना चाहिए कि मनुष्य का यदि जीवन मिला है, जिसको सब प्राणियों से श्रेष्ठ जीवन माना गया है, तो मेरे मानव जीवन की सफलता न संसारिक पदार्थों को उपलब्ध करने में है, न द्वैत में टिके रह जाने में है, मुझे अद्वैत भूत होना है, मुझे ब्रह्मी भूत होना है, मुझे ब्रह्म के साथ एक होना है। और होना क्या है, ये तो सच्चाई है, होना कुछ नहीं है, इसको केवल डिस्कवर करना है, इसको केवल रियलाइज करना है, इसको केवल अनुभव करना है। कौन सी धन्यता चाहिए, एक नंबर, दो नंबर की, तीन नंबर, फिर उसके साधनों की चर्चा करें। एक नंबर धन्यता चाहिए तो उसके साधन अलग हैं, दो नंबर धन्यता यदि चाहिए तो उसकी साधना अलग है, और तीन नंबर यदि धन्यता चाहिए तो उसकी साधना अलग है। कौन सी चाहिए भैया, सुपरलेटिव टॉप मोस्ट? अच्छा जी, पहली धन्यता की साधना क्या है, श्रेष्ठ कैसे बना जाए, दान करिए, यज्ञ करिए, सत्कर्म करिए और पुरुषार्थ करके धन संग्रह करिए, धर्ममय जीवन यापन करिए, ये प्रथम धन्यता को प्राप्त करने का साधन है। क्योंकि कुछ लोग टॉप मोस्ट वाले होंगे, सब लोग टॉप मोस्ट वाले नहीं, इसलिए तीनों को ही थोड़ा बता दे रहा हूं संक्षेप में। हम तो टॉप मोस्ट को ही प्रायोरिटी देंगे। सेकेंड जो धन्यता है, जिसको श्रेष्ठतर शब्द से कहा, उसको प्राप्त करना यदि हो तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम। ये जो नवधा भक्ति है और भगवान की जो अनुरक्ति है, भगवान का प्रेम प्राप्त करने की जो साधना है, उसका अनुष्ठान करिए, आप श्रेष्ठतर बनेंगे। दो की बात तो हो गई, अब तीसरी के लिए क्या करना पड़ेगा, आत्मावारे श्रोतव्यः मंतव्यः निधिध्यासितव्यः। यदि श्रेष्ठतम धन्यता को यदि उपलब्ध करना हो तो ये तीन राजपथ है। अध्यात्म विद्या का श्रवण करिए, आत्म तत्व का मनन करिए और आत्म तत्व का निधिध्यासन करिए। फिर आपको जब आत्म तत्व की अनुभूति होगी तो लगेगा वाह। कैसा लगेगा, जब आप स्वप्न में सोए हो और बहुत कष्टकर स्वप्न देख रहे हो, दुष्टों ने आपको पकड़ लिया, आग जला ली, आपके मांस को खाना चाहते हैं और उस जलती हुई अग्नि में जिंदा ही आपको डालेंगे और जलाएंगे, पकाएंगे और फिर खाएंगे, तो आपके मन की दशा क्या होगी? और थोड़ा आपको आग के पास ले गए, आग की गर्मी लगी और आपकी नींद टूट गई, कैसा लगेगा आपको? वाह, बस गया रे, मरने ही वाला था, हैं? बस गया। फिर थोड़ा विचार करेंगे, बोला अरे पागलपना है, क्या बचना है, बचा ही हुआ था, सोया था आराम से आनंद से कमरे में, केवल भ्रांति हो गई, केवल स्वप्न आ गया, वहां कोई आग थी ना, कोई दुष्ट थे ना, कोई पकड़ा गया था। तो जब व्यक्ति ब्रह्म को उपलब्ध करेगा, जब अपने आत्म तत्व का आविष्कार करेगा, जब अपने आत्मसत्ता का आविष्कार करेगा, तो एक बार उसको लगेगा अरे वाह, बस गया, मर ही रहा था। फिर उसको लगेगा ये एक अद्वितीय तत्व सब भूतों में विलसित हो रहा है, जिस अधिष्ठान के ऊपर सब कुछ भासित हो रहा है, केवल जैसे रज्जु में सर्प भासित होती है, मरुस्थल में मरीचिका भासित होती है जल रूपेण, उसी प्रकार ये संपूर्ण जगत कल्पित है, स्वप्नवत कल्पित है। इस अनुभूति में जब व्यक्ति प्रतिष्ठित होता है, मैं आनंद स्वरूप हूं, अजन्मा अमर अविनाशी तत्व हूं मेरा स्वरूप, ये चरम धन्यता का रूप है। और इसी को उपलब्ध करने से हमारे जीवन की सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। यही एकमात्र उपाय है जो हमारे जीवन की सारी समस्याओं का समाधान कर सकता है। और इस संसार में कोई उपलब्धि नहीं है, कोई साधन नहीं है, कोई साधना नहीं है कि इस जीव की दरिद्रता को, इस जीव की पीड़ा को, इस जीव के कष्ट को सर्वथा समूल नष्ट कर सके। यही एकमात्र साधन है। और इस साधन को उपलब्ध करने का, इस स्थिति को उपलब्ध करने की साधना है ज्ञान। रीते ज्ञानात् न मुक्ति ही, ज्ञान के बिना इस तत्व को उपलब्ध नहीं किया जा सकता, इस स्थिति को उपलब्ध नहीं किया जा सकता, इस अनुभूति को उपलब्ध नहीं किया जा सकता। तो हमारे पास तो ज्ञान बहुत है, किस ज्ञान की बात हो रही है, किस ज्ञान से ये काम होगा? तब आचार्य शंकर हमें सावधान करते कि भैया तुम्हारा ज्ञान या काम लगेगा नहीं। यहां एक दूसरे प्रकार के ज्ञान की जरूरत पड़ेगी। तज ज्ञानम प्रशमकरम यद इंद्रियाणाम, तज गेयम यद उपनिषित्सु सुनिश्चितार्थम, ते धन्या भुवि परमार्थ निश्चितेहा, शेषास्तु भ्रम निलये परिभ्रमन्ति। ऐसा ज्ञान चाहिए जो आपके हमारी इंद्रियों को शांत कर दे, हमारे मन को शांत कर दे। वही ज्ञान हमें परम तत्व की उपलब्धि करा सकता है, और कोई ज्ञान समर्थ नहीं है जो इस परम तत्व को उपलब्ध करा पाए। साधन जगत में यदि अग्रसर होना है, और विशेषतः यदि वेदांत की साधना से अपने जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो मैं एक दो चीज साधकों से अत्यंत विनम्रता से निवेदन करना चाहूंगा। पहले तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आप जो प्राप्त करना चाहते हैं उसका स्वरूप क्या है। साधना को लेकर के बड़ा कंफ्यूजन रहता है। बड़े जो हमारे तथाकथित हम जो शिक्षित लोग हैं, साध्य क्या है हमारा, प्राप्तव्य क्या है हमारा, हमें क्या प्राप्त करना है, वही जीवन भर निश्चय नहीं होता है, उम्र निकल जाती है। अभी अभी आपको एक रिसेंट एक्सपीरियंस बता रहा हूं। काशी से मैं आ रहा था ट्रेन में, एक सज्जन काशी से ही ट्रेन में उठे मेरे साथ, मेरे सामने वाली बर्थ पे उनको जर्नी करनी थी। जब देखा कि एक साधु बाबा आए हैं तो हम बैठे, तो उन्होंने चर्चा शुरू की, जैसा बहुत सामान्यता हम लोगों के साथ होता है, जब कोई भी देखता है तो कहीं भी पकड़ता है, बहुत प्रकार के लोग पकड़ते हैं, बड़े चित्र विचित्र परिस्थितियों से हम लोगों को जो है दो चार होना पड़ता है। प्रेमपुरी में तो बड़ा सुरक्षित है, हम लोग अपने घर में हैं। जब बाहर जर्नी में होते हैं, ट्रेन में होते हैं, अथवा कहीं भी बाहर होते हैं तो पता चलता, कभी साथ रहेंगे तो पता चलेगा। परंतु वो व्यक्ति बड़े सज्जन थे, बड़े जिज्ञासु थे, परंतु उनके मनस्थिति को देख करके मुझे थोड़ा दुख हुआ। उन्होंने कहा कि स्वामी जी आई एम टोटली कन्फ्यूज्ड, आई वॉन्ट टू नो हु इज द सुपर मोस्ट। पहले तो मैं प्रश्न नहीं समझा कि हम तो दो ही लोग बैठे हैं, आप किसके लिए पूछ रहे हैं हु इज द सुपर मोस्ट। फिर उन्होंने धीरे धीरे एक्सप्लेन किया कि बोले स्वामी जी पहले मैं अमृतानंदमयी का भक्त था, मां के आश्रम में जाता था, मां की सेवा करता था, मां के एक्टिविटीज में भाग लेता था और जो ललिता सहस्त्र इत्यादि उनकी जो उपासना पद्धतियां उसको उपासना करता था और अम्मा को मैं सुपरमोस्ट मानता था। फिर मैंने देखा कि धीरे धीरे अम्मा जो है कृष्ण भाव में दर्शन देने लगी। मां की कोई पद्धति होगी, मुझे तो इतना ज्ञान नहीं है कि मां कैसे दर्शन देती हैं क्या करती हैं, जैसा उन्होंने बताया कि वो कृष्ण भाव में आकर के साधकों को दर्शन देती है, तो मेरे मन में प्रश्न हुआ कि मां यदि कृष्ण भाव में दर्शन दे रही है इट मीन्स मां मस्ट बी डिवोटी ऑफ कृष्णा, कृष्ण की ही भक्त होगी, तभी तो कृष्ण भाव में आकर के दर्शन दे रही है, देन कृष्णा मस्ट बी सुपर मोस्ट नॉट अम्मा। मैंने कहा ठीक है, फिर क्या किया? बोले तब मैं इस्कॉन में आ गया, क्योंकि इस्कॉन के जो साधना पद्धति है कृष्ण के आराधक हैं, इस्कॉन से जुड़ गए, इस्कॉन के एक्टिव मेंबर्स बन गए। मैंने कहा फिर क्या हुआ? अब मेरे को भी थोड़ी जिज्ञासा हुई। बोले एक चीज मुझे समझ में नहीं आई, इस्कॉन में रहते रहते भी वो लोग बताते हैं कि कृष्णा इज द सुपर मोस्ट, शिवा इज द अंडर ऑफ कृष्णा इज वर्किंग। बोले स्वामी जी ईश्वर भी किसी को अंडर रखे, किसी को ऊपर रखे, किसी को साइड रखे, ईश्वर तो कम से कम समदर्शी होना चाहिए, सब जगह होना चाहिए, ये अंडर ऊपर साइड ये मुझे समझ में नहीं आया, इसलिए मैं फिर कन्फ्यूज्ड हो गया। बोले फिर क्या हुआ? बोले फिर अब मैं रियल घटना बता रहा हूं, कोई स्टोरी नहीं बना रहा हूं, अभी अभी रिसेंट मेरे साथ घटी है। बोले माने ऐसे कंफ्यूजन जीवन में बना रहता है। बोले फिर कुछ राधा स्वामी वाले लोग मेरे मित्र मंडली में आए, क्योंकि व्यक्ति जब खोजता है ना भैया, सबको सब जगह प्रेमपुरी नहीं मिलता है कि आपको सीधा वेदांत तो मिल जाएगा और अल्टीमेट की बात सुनने के लिए मिल जाएगी। व्यक्ति के भीतर जब जिज्ञासा होती है, ललक होती है, तो व्यक्ति घर से बाहर निकलता है खोजने के लिए। मैंने कहा कि अच्छा भैया राधा स्वामी वालों को क्या मिला? बोले राधा स्वामी वालों ने कहा कि भगवान ने गीता में बताया मैं कालों का काल हूं, महाकाल हूं, कालों का काल हूं, वही भगवान ने बताया होगा कालोस्मि लोक क्षय कृत प्रवृद्ध इत्यादि, और महाकाल के रूप में बोले हमारे जो बाबाजी हैं और ऐसे जो दूसरे संत हैं, राधा स्वामी वालों की ऐसी मान्यता है, कबीर है, दादू है, ऐसे जो श्रेष्ठ संत हैं वो भगवान का अवतार लेकर के आते हैं, वो महाकाल है माने काल को भी संचालित करने वाले हैं, वो सुपरमोस्ट हैं। तो फिर मैंने पूछा कि यहां पर आपको क्या प्रॉब्लम है? बाबा जी महाकाल हैं। तो आदमी जिज्ञासु है उसके भीतर में, कहा कि स्वामी जी प्रश्न यही है, महाकाल जो होगा वो काल को चलाने वाला होगा, मस्ट बी बियॉन्ड काल से, और ये जो बाबा जी हैं जिनके प्रति तो मैं श्रद्धा करता हूं, परंतु वो तो इस काल के भीतर ही पैदा हुए, वो बड़े हो रहे हैं, एक काल के भीतर उनका शरीर भी चला गया, तो हाउ ही कैन कंट्रोल द काल? सो स्टिल आई एम कंफ्यूज्ड, वांट टू नो सुप्रीम रियलिटी। क्या ज्ञेय है, क्या जानना है, क्या प्राप्त करना है? मैंने ये श्लोक तो नहीं सुनाया, परंतु तो यहां तो भगवान भाष्यकार क्लियर कर दे रहे, तज ज्ञेयम् यद उपनिषत् सुसुनिश्चितार्थम्। आपका ज्ञेय क्या है, आपका प्राप्तव्य क्या है, आपको जीवन में जानना क्या है, आपको जीवन में उपलब्ध करना क्या है, जिसको उपलब्ध करने से आपकी चरम उपलब्धि होगी, जिसको उपलब्ध करने से आप कृतकृत्य हो जाएंगे, जिसको उपलब्ध करने से जो तीन नंबर की धन्यता है, श्रेष्ठतम धन्यता है, वो हमें उपलब्ध हो जाएगी, वो है ज्ञेय हमारा उपनिषद सुनिश्चितार्थम। उपनिषद का जो एकमात्र प्रतिपाद्य ब्रह्म तत्व है वो हमारे जीवन का ध्येय है, वो हमारा प्राप्तव्य है, और उसको प्राप्त करने से ही हम कृतार्थ हो सकते हैं। उससे पहले भैया किसी को भी प्राप्त करेंगे तो एक तो अंडर और साइड वाला प्रॉब्लम रहेगा, एक सीमा के भीतर, एक आकार के भीतर उस असीम का प्रकटन तो हो सकता है, उस सगुण के भीतर निर्गुण सत्ता का प्रकाश हो सकता है, परंतु जिस चेहरे में, जिस रूप में, जिस आकार में वो सत्ता प्रकट हो रही है, आप यदि मानो कि केवल इतना ही है, आकार के भीतर जितना आया हुआ है उतनी ही रियलिटी है, इससे बाहर जो है वो कल्पित है, तो आप भ्रांति में हैं, आप भ्रम में हैं, आपके मन में किसी न किसी दिन हजारों प्रश्न उठेंगे और आप उलझेंगे। इसलिए आपका इष्ट कोई भी हो, शक्ति हो, शिव हो, कृष्ण हो, विष्णु हो, अद्वैत वेदांत के अनुसार कहीं कोई टकराव नहीं है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, कहीं पर कोई क्लेश नहीं है, केवल आपके भीतर इतनी समझ परफेक्ट होनी चाहिए, वो जो परम तत्व है, जो जगत का कारण है, जिसमें सारा जगत स्थित है, जिसमें जाकर के सारा जगत समाहित हो जाएगा, वही तत्व इस रूप में प्रकट हुआ है, इसलिए ये श्रेष्ठ है, इसलिए यह मेरा उपास्य है, और केवल इस रूप के भीतर ही प्रकट हुआ है ऐसी बात नहीं है, वो तो मेरी भक्ति के कारण, मेरे श्रद्धा के कारण, मेरी आराधना के कारण, मेरे भाव के कारण मेरे सामने इस रूप में खड़ा होकर के हंस रहा है, और एक रूप से वो पूरे कण कण में व्याप्त है। आपके उपास्य के प्रति आपकी दृष्टि यदि इतनी व्यापक नहीं होगी, आपका उपास्य यदि विष्णु से लड़ने लगेगा, शिव से लड़ने लगेगा, कृष्ण से लड़ने लगेगा, राम से लड़ने लगेगा, तो उसका तो पूरा टाइम लड़ाई में बीत जाएगा, आपका उद्धार कब करेगा, कब आपका कल्याण करेगा। और लड़ाई झगड़े में बहुत ज्यादा कल्याण की बात भाई याद नहीं आती है, जान बसे तो लाखों पाए। इस भारतवर्ष के ऊपर, इस सनातन धर्म के ऊपर आचार्य शंकर का ये बहुत बड़ा उपकार है, पीढ़ी दर पीढ़ी आचार्य शंकर की इसके लिए ऋणी रहेगी कि उन्होंने एक दृष्टि दी, एक जीवन सूत्र दिया, एक अद्वैत तत्व सर्वत्र सब रूपों में सदा विलसित हो रहा है। वो आपका प्रेमी बन सकता है, आपका प्रोटेक्टर बन सकता है, आपका सहयोगी बन सकता है, आपका पार्टनर बन सकता है, और उसके साथ में उसकी अखंडता, उसकी सर्वव्यापकता, उसकी सर्वशक्तिमत्ता में कहीं कोई न्यूनता नहीं आती। तज गेयम यद उपनिषद सुसुनिश्चितार्थम, उपनिषद सुसुनिश्चितार्थम। अब हमारे लिए ये प्रश्न है, क्या हमने उस तत्व को अपने जीवन का ध्येय बनाया कि नहीं, क्या हमने उस तत्व को प्राप्त करने का उद्देश्य अपने जीवन का बनाया कि नहीं। जब तक हमारे भीतर उस अद्वितीय तत्व को प्राप्त करने की इच्छा पैदा नहीं होगी, संकल्प पैदा नहीं होगा, निश्चय पैदा नहीं होगा, तब तक हम जीवन के किसी न किसी स्तर पर भटके रहेंगे, क्योंकि हमारी जो शक्ति है, हमारी जो जिज्ञासा है, हमारी जो एनर्जी है, वो सेनेटाइज्ड होगी नहीं। कहीं ना कहीं हम भटके रहेंगे, कहीं ना कहीं हमारी चेतना उलझी रहेगी। कभी दौड़ के ज्योतिष के पास जाएंगे, कभी फलाने देव के पास जाएंगे, कभी फलाने मंदिर के पास जाएंगे, कभी फलाने गुरु के पास जाएंगे, कभी समोसा खाने से हमारे भीतर कृपा आएगी, कभी कोई नगीना पहनने से हमारे भीतर कृपा आएगी, कभी कोई रूमाल रखने से हमारे भीतर कृपा आएगी। भैया, यह कृपा के हजारों द्वार हैं आपको यदि प्राप्त करना हो तो। किसी संत ने कहा, भटकन की बहु भांति गली है। यहां भटकने के लिए गलियां बहुत है, और यदि सीधे राजपथ पर चलना है तो व्यक्ति को ये निश्चय करना चाहिए, मुझे जो मानव जीवन मिला है उसका एकमात्र उद्देश्य है आत्म तत्व को उपलब्ध करना। और उसकी उपलब्धि के बिना कृतकृत्य हुआ नहीं जा सकता, परिपूर्ण हुआ नहीं जा सकता। मैं तो ऐसा विश्वास करता हूं, यदि चतुर्भुज भगवान स्वयं आपके सामने आ जाए और आपके सारे कष्टों का निवारण करना चाहे, और आप कहे कि ना, मैं तो शरीर को ही आत्मा मानता रहूंगा, चतुर्भुज भगवान आकर के भी आपके कष्टों का विनाश नहीं कर सकते। स्वयं साक्षात शिव वृषभध्वज होकर के आ जाए, नंदी पर बैठ करके आ जाए, और आप कहेंगे कि ना, मैं तो शरीर को ही आत्मा मानूंगा और मुझे सारे कष्टों का निवारण कर दीजिए, भगवान शिव भी समर्थ नहीं होंगे कि आपके कष्टों का निवारण कर दे। स्वयं चतुर्मुख ब्रह्मा जी आ जाए, हंस पर बैठ करके आपके सामने प्रकट हो जाए, और आप कह दे कि मैं तो ये शरीर को ही आत्मा मानता रहूंगा और मेरे सारे कष्टों का निवारण कर दीजिए, ब्रह्मा जी भी समर्थ नहीं होंगे। तो हम शरीर को आत्मा मानेंगे, सांसारिक पदार्थों का संग्रह करेंगे और अपने कष्टों को मिटाना चाहेंगे, इज इट पॉसिबल? कहां जी रहे हैं हम, क्या स्तर है हमारे जीवन का? अर्जुन के सामने जब विकराल समस्या खड़ी हुई, गीता जी की जो पटभूमि है आप सब लोग उससे सुपरिचित हैं, अर्जुन को जब उस विकराल संकट से बाहर आना था, सौभाग्य से भगवान की शरण में गया, शिष्यस्तेहं साधिमां त्वां प्रपन्न, आपका शिष्य हूं, आप मेरा शासन करिए, शासन करिए माने मेरे को अब संकट से बाहर निकालिए। और सर्वविध संकट से आप बाहर निकालिए मुझे, मेरे जीवन के हर समस्या का आप समाधान करिए। वहां पर जो भगवान ने अर्जुन को जो जीवन की समस्याओं का समाधान बताया, वो हमारे लिए समझने लायक है, क्योंकि हम बहुत बार कंफ्यूज्ड रहते हैं, कहां जाने से हमारी सारी समस्याओं का समाधान होगा, क्या मैं कर दूं, क्या मैं पहन लूं, किसको मैं मान लूं, किसको मैं खुश कर लूं, ताकि मेरी जीवन की समस्याओं का समाधान सर्वदा सर्वदा के लिए हो जाए। अच्छी अभिलाषा है, अच्छी आकांक्षा है तो प्रत्येक प्राणी के मन में होती है, होनी भी चाहिए, क्योंकि मनुष्य तो पैदा ही इसीलिए हुआ है कि सब समस्याओं से ऊपर उठ करके आनंद स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाए। तो जब भगवान के सामने अर्जुन ने अपनी समस्याओं को सजा करके रखा, तो भगवान ने क्या समाधान प्रस्तुत किया? क्या भगवान ने कहा कि भैया तुम्हारे फलाने फलाने नक्षत्र खराब है, तुम जाओ वो वाला नगीना पहन लो, उस हाथ में वो अंगूठी, उस हाथ में वो अंगूठी, उस हाथ में वो अंगूठी, तुम्हारे समस्या का समाधान हो जाएगा? क्या भगवान ने ये समाधान दिया कि भैया तुम्हारी सेना थोड़ी कम है, सामने वाले की सेना ज्यादा, इसलिए तुम डर रहे हो, थोड़ा और सेना का संग्रह कर लेते हैं, युद्ध थोड़ा पोस्टपोन्ड कर देते हैं, इनसे डबल सेना कर देते फिर समाधान हो जाएगा, ऐसा समाधान दिया क्या? क्या समाधान दिया?
न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूयः।
अजो नित्य शाश्वतोयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये भैया वन एंड ओनली समाधान है फॉर ऑल काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। और जब तक इस स्थिति को उपलब्ध नहीं करेंगे, संसार की कोई शक्ति हमारे जीवन की सारी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकती। बात ठीक है कि गलत है? ठीक है, तो बस यही हमें करना है, यही हमें उपलब्ध करना है। हमारे मन में एक सुदृढ़ संकल्प पैदा हो कि समस्याएं तो है, उसका समाधान भी मुझे चाहिए, परंतु उसका रास्ता ठीक होना चाहिए। कहां से समस्याओं का समाधान मिलेगा? वेदांत आपका आह्वान करता है कि आइए मेरे पास, आपकी सारी समस्याओं का समाधान है। वेदांत हमारा पथ प्रदर्शन करने के लिए तैयार है, वेदांत हमारे लिए गाइडलाइन लेकर के खड़ा है। अपने स्वरूप का आविष्कार करिए, अजर अमर अविनाशी बन जाइए। ते धन्या भूवि परमार्थ निश्चितेहा। वे धन्य हैं जिन्होंने इस संसार में आकर के मनुष्य के रूप में जन्म लेकर के परमार्थ को उपलब्ध करने का निश्चय किया, ब्रह्म को जानने का संकल्प किया। और भैया जब संकल्प सुदृढ़ हो जाए तो आदमी साधना में प्रवृत्त हो जाता है, और साधना करते 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 साधक एक दिन उसको उपलब्ध कर लेता है। ते धन्या भूवि परमार्थ निश्चितेहा।
धन्यता तो यही है हमारे मन में परम तत्व को उपलब्ध करने का संकल्प पैदा हो,
और ऐसा संकल्प जब तक पैदा नहीं होगा, शेषास्तु भ्रम निलये परिभ्रमंती। बाकी जो लोग हैं जिन्होंने ऐसा निश्चय नहीं किया हुआ है, अथवा हमारा भी जब तक ऐसा निश्चय नहीं होता है, तो भ्रम निलये इस भूल भुलैया में परिभ्रमंती भटक रहे हैं। हम भी भटक रहे हैं, और जिन्होंने ऐसा निश्चय नहीं किया वो सब भटक रहे हैं। मैं परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूं, हम सब साधकों के मन में एक ऐसा संकल्प उदित हो कि मैं श्रवण मनन और निधिध्यासन करते हुए उस परम तत्व को उपलब्ध करूंगा, और मनुष्य के रूप में यदि जन्म लिया है तो मैं धन्य होकर के इस धराधाम से लौटूंगा। भगवान सबको ऐसी शक्ति दे। इसी पावन प्रार्थना के साथ मैं इस वाक्य पुष्पांजलि को श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में अर्पित करता हूं, मेरे गुरुदेव के चरणों में अर्पित करता हूं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।